अध्याय 8 राज्य के स्वरूप एकात्मक और संघात्मक। आज छोटे छोटे राज्य के अलावा बड़े बड़े तथा विस्तृत राज्य भी पाए जाते हैं। इन विस्तृत राज्यों का शासन केंद्रित रूप से नहीं किया जा सकता, अतः शासन की सुविधा के लिए उन्हें कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। केंद्रीय शासन और इकाइयों के बीच जो आपसी संबंध होता है उसी के अनुसार एकात्मक तथा संघात्मक राज्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार राज्यों को शासन के केंद्रित एवं विकेंद्रित होने पर राज्य के एकात्मक और संघात्मक विभेद किए जा सकते हैं। थोड़े में शासन के इस वर्गीकरण का आधार शासन शक्तियों का क्षेत्रीय या भौगोलिक विभाजन है। संक्षेप में एकात्मक और संघात्मक राज्यों का भेद यों है। क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर केंद्रीय सरकार होती है और उसके अंतर्गत प्रांतीय या राज्य सरकारें होती हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के संबंध के आधार पर देश के संविधान को एकात्मक या संघात्मक कहते हैं। जिस शासन व्यवस्था में प्रांतीय शासन अपने अस्तित्व के लिए केंद्र पर निर्भर करता है उस शासन का रूप एकात्मक हो जाता है। इसके विपरीत संघात्मक शासन में राज्यों की इकाइयां अपने राज्य के स्वरूप या अस्तित्व के लिए केंद्र पर आश्रित नहीं रहती तथा संघ और राज्यों के कार्य क्षेत्र अलग अलग बटे हुए रहते हैं। इस प्रकार एकात्मक और संघात्मक राज्यों में मौलिक भेद यह है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्ति सरकार में निहित रहती है और संघात्मक राज्य में शासन संचालन की सत्ता एक केंद्र और इकाइयों में बटी रहती है, अर्थात अंतिम सत्ता एक स्थल में निहित नहीं रहती बल्कि केंद्र तथा इकाइयों के बीच बटी रहती है। सर जॉन सीले राज्य के इस भेद को मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि यह प्रकार भेद ना होकर केवल अंश भेद है। इसके विपरीत मैरियट का विचार है कि यह भेद केवल अंश का ना होकर प्रकार का भी है। पहला, एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य की परिभाषा, एकात्मक सरकार में राज्य की समस्त शासन शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित रहती है। संपूर्ण देश के लिए एक कार्यपालिका, एक विधानपालिका और एक न्यायपालिका होती है। सारे देश में शासन की एक ही इकाई होती है। यदि प्रांतों, जिलों या इकाइयों में देश का विभाजन होता है तो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए इकाइयों का ना तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ना ही अधिकार। उनका निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है जो उनका अंत भी कर सकती है। इनकी सत्ता प्रदत्त होती है, मौलिक नहीं। केंद्रीय सरकार उसमें कमी बेसी कर सकती है। संविधान सारी शासन शक्तियां केंद्र सरकार को स्पुर्द करती हैं और केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा के हेतु उनमें कुछ शक्तियों का इकाइयों को दे देती हैं। निष्कर्षतः केंद्रीय सरकार मालिक और इकाइयां उसका दास होती हैं। केंद्रीय सरकार की शक्तियां मौलिक हैं जबकि इकाइयों की शक्तियां प्रदत्त। विभिन्न विद्वानों ने एकात्मक राज्य की निम्न परिभाषाएं दी हैं। पहला, फाइनर। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानून सर्वशक्तिमान होते हैं। दूसरा, डाइसी। एकात्मक राज्य के केंद्रीय सत्ता के हाथ में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है। तीसरा, विलोबी। एकात्मक राज्य में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप में एक केंद्रीय सरकार के हाथ में रहते हैं। ये सरकार इच्छा अनुसार जैसा वह उचित समझती है उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। चौथा, स्ट्रॉन्ग एकात्मक शासन वह है जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता संविधान द्वारा केंद्र को प्रदान की जाती है और केंद्र से ही स्थानीय शक्तियां प्राप्त करती हैं। वस्तुतः केंद्र की कृपा पर ही उनका अस्तित्व आश्रित है। पांचवा, गवर्नर जब संविधान द्वारा शासन के सब अधिकार केवल एक सत्ता को सौंप दिए जाते हैं और अन्य शासन या क्षेत्रीय सरकारें अपने सब अधिकार उस सत्ता से प्राप्त करती हैं, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी केवल उसी से प्राप्त करती हैं, तब उसे देश में एकात्मक सरकार कही जा सकती है। एकात्मक सरकार कई देशों में पाई जाती है। इनमें सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान आदि है। एकात्मक राज्य के लक्षण। एकात्मक राज्य के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार में पूर्ण रूप से शासन शक्ति केंद्रित होती है। दूसरा, एकात्मक राज्य एक इकाई होते हैं। क्षेत्रीय या स्थानीय इकाई केंद्र के अंतर्गत होती हैं और उसकी सुविधा के अनुसार कार्य करती हैं। तीसरा, एकात्मक शासन में संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शासन शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। इससे सत्ता का केवल एक स्रोत होता है, केवल एक इच्छा शक्ति से शासन चलता है। समस्त सत्ता का मूल स्रोत केंद्रीय सरकार में निहित रहता है। चौथा, केंद्रीय सरकार सर्वशक्तिमान होती है। अव्ययी एककों की ना तो स्वतंत्र सत्ता होती है और ना उसकी सत्ता मालिक होती है, वे केंद्र सरकार का अभिकर्ता मात्र होती है। पांचवा, अव्ययी एकक या इकाइयां केंद्र सरकार की प्रतिनिधि हैं और जो भी स्वायत्त है अथवा शासक विषयक योग्यता उन्हें दी जाती है उनका अस्तित्व संवैधानिक नहीं होता, अपितु वे केंद्र सरकार की देह होती हैं। एकात्मक राज्य के गुण। अब संविधान की प्रवृत्ति एकात्मक होती जा रही है। आधुनिक काल में विज्ञान के विकास तथा संकटपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण दृढ़ सरकार की आवश्यकता है। विशेषकर संकट काल के संघात्मक राज्यों में भी एकात्मक की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। गुडनो ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि अमेरिका वासियों को एक नया संविधान बनाना पड़े तो वे ऐसा संविधान बनाए जिसमें केंद्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो। तात्पर्य यह है कि एकात्मक शासन काफ़ी लाभदायक है। उसके गुण यो हैं। पहला, दक्ष एवं कुशल शासन। एकात्मक शासन में कार्य क्षमता और दक्षता बहुत अधिक होती है। समस्त उत्तरदायित्व केंद्र पर रहता है। नीतियों का निर्धारण और शासन का संचालन एक ही स्थान पर होता है। फलतः शासन में कुशलता और सरलता आती है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता। एकात्मक शासन राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। पूरे देश में एक विधान, एक कानून और एक नीति का अनुसरण किया जाता है। सारी शक्तियां केंद्र में निहित रहती हैं। इसके अलावा संघ शासन के विपरीत एक ही नागरिकता रहती है, जिसके चलते नागरिकों की निष्ठा और भक्ति का बंटवारा नहीं होता। परिणाम स्वरूप एकात्मक सरकार में राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। पूरा देश एक सूत्र में बंध जाता है। तीसरा, संकटकालीन स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। संकटकाल का सामना करने के लिए एक दृढ़ तथा शीघ्र निर्णय लेने वाली सरकार की आवश्यकता होती है। उस समय शासन के समस्त कार्यों का निर्देशन एक स्थान से होना चाहिए। ऐसा एकात्मक शासन से ही संभव है, क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में रहती हैं। चौथा, लचीलापन। विलोबी के मतानुसार एकात्मक शासन का बहुत बड़ा गुण उसका लचीलापन है। संघात्मक शासन में संशोधन की जटिल प्रक्रिया के कारण शासन में समयानुकूल परिवर्तन कठिन हो जाता है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में साधारण कानून की विधि द्वारा ही संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि एकात्मक शासन विशेष परिस्थितियों और अवसरों का सामना आसानी से कर सकता है। पांचवा, सरल शासन। एकात्मक शासन काफी सरल होता है, उसमें ना तो दोहरी शासन व्यवस्था है, ना दोहरी नागरिकता और ना उत्तरदायित्वों का झगड़ा। संविधान सीधा सपाटा होता है। केंद्रीय शासन में शक्तियों के निहित रहने के कारण प्रशासनिक निर्णय आसानी और बिना विलंब से लिया जा सकता है। छठवां, कर्म खर्च। संघात्मक सरकार की अपेक्षा एकात्मक सरकार में कम व्यय होता है, क्योंकि संघात्मक शासन की तरह इस प्रणाली में संघ तथा इकाइयों की पृथक पृथक दोहरी शासन व्यवस्था नहीं रहती तथा कम से कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। सातवां, संघर्ष का अभाव। एकात्म सरकार में केंद्र तथा इकाइयों के बीच संघर्ष की संभावना नहीं के बराबर रहती है। आठवां, दृढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकात्म सरकार की स्थिति काफ़ी दृढ़ रहती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है, एक रूप नीति का अनुसरण किया जा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को अधिक निपुणता से निभाया जा सकता है। एकात्मक राज्य के दोष। एकात्मक राज्य के निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला, जनतंत्र का विरोधी। कुछ आलोचकों का कहना है कि एकात्मक सरकार कई रूपों में जनतंत्र का विरोधी है। इसमें अत्यधिक विकेंद्रीकरण के चलते जनतंत्र को सफलता नहीं मिल सकती। जनतंत्र की सफलता के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, केंद्रीयकरण नहीं। केंद्रीयकरण के फलस्वरूप ही इसमें स्थानीय शासन फलफूल नहीं सकता। इतना ही नहीं, एकात्मक शासन में जनता की स्वतंत्रता भी अपहरण होती है तथा नागरिकों की प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता। दूसरा, जनता की उदासीनता। एकात्म सरकार में जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति दिलचस्पी दिखाने तथा शासन में हाथ बटाने का पूर्ण अवसर नहीं मिलता, इसलिए सार्वजनिक कार्यों में जिसकी रुचि कम हो जाती है और वह इन बातों से उदासीन होने लगते हैं। प्रशासन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलने के कारण जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हो पाता। गार्नर के शब्दों में, एकात्मक शासन में स्थानीय कार्यक्षमता का ह्रास होता है, सार्वजनिक कार्यों के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है, स्थानीय शासन की उपयोगिता घट जाती है और केंद्रीय नौकरशाही का विकास होता है। तीसरा, नौकरशाही का शासन। एकात्म सरकार में जनता को शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। फलतः नौकरशाही का शासन स्थापित हो जाता है और शासन के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हो जाने के भय से लोग डरे रहते हैं। चौथा, उत्तरदायित्व का बोझ। एकात्मक शासन पद्धति में शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के ऊपर रहता है। उन कार्यों को भी उसे ही करना पड़ता है जिन्हें क्षेत्रीय स्थानीय संस्थाएं करती हैं। पांचवां, बड़े राष्ट्रियों के लिए अनुपयुक्त। एकात्म सरकार विस्तृत तथा विभिन्नतापूर्ण राष्ट्र के लिए अनुपूरक है। बड़े बड़े देशों में भिन्न भिन्न जातियाँ, धर्म एवं भाषाएं होती हैं, जिनकी आवश्यकता भी विभिन्न पड़ती है तथा ना तो उन आवश्यकताओं को उससे पूर्ण ज्ञान ही हो सकता है और ना ही उससे छीना जा सकता है। अतः विस्तृत एवं विभिन्नतापूर्ण देशों में एकात्म सरकार सफल नहीं हो सकती। छेवा अनुदार शासन एकात्म सरकार के विरुद्ध अनुदार होने का भी आक्षेप लगाया जाता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का अपरिवर्तनशील श्रृंखलाबंद शासन स्थापित हो जाता है। अनुदार होने के कारण यह नीति योजनाओं को जल्द कार्यान्वित नहीं करती तथा शासन का विरोध करती है। फलतः इन शासन व्यवस्था में क्रांति का भय पैदा हो जाता है। सातवां अधिनायक तत्व का भय। एकात्म शासन में केंद्र सरकार कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो जाता है और तानाशाही का रूप धारण कर लेती है। यह भी भय बना रहता है कि वह कहीं नौकरशाही भी तानाशाही का रूप ना ले ले। दूसरा, संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य की परिभाषा। एकात्मक राज्य के समांतर दूसरी व्यवस्था संघात्मक राज्य है। शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है संघ। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः शब्द उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौता द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है, जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य अपने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार संगठित करते हैं और शेष विषय में अपनी अपनी पृथक स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार संघ राज्य में एक संघीय या केंद्रीय सरकार होती है और कुछ संघी भूत इकाइयों की सरकारें। संघ का निर्माण एक लिखित समझौता जो एक संविधान का रूप होती है के द्वारा होता है। संविधान द्वारा केंद्र तथा इकाइयों का सरकारों के बीच शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। सामान्य हित में विषयों का प्रबंध केंद्रीय सरकार के हाथ में रहता है और क्षेत्रीय महत्व के विषयों का संघीय इकाइयों के हाथ में। दोनों सरकारें अपने अपने विषय क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। उनके अधिकार क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया तथा उनकी सहमति से ही संभव है। दोनों सरकारों की शक्तियां मौलिक होती हैं। दोनों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर करता है, न कि किसी दूसरे की इच्छा पर। तात्पर्य यह है कि संघ राज्य दोहरी सरकार है। यह दो प्रकार की समकक्ष सरकारों का राज्य है। संघ सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सोवियत संघ आदि देशों में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। विभिन्न विद्वानों ने संघ शासन की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। पहला, नॉर्थर्न संघात्मक राज्य छोटे छोटे राज्यों का एक योग्य होता है, जिसमें प्रत्येक अपनी पृथक सत्ता को रखते हुए परिभाषित समान उद्देश्य के लिए संघ के रूप में एक दूसरे से मिलती है, जो कम से कम सैद्धांतिक रूप में विघटनशील नहीं है। दूसरा, डायसी संघवाद एक राजनीतिक समझौता है, जिसके अनुसार राज्यों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा, गवर्नर संघात्मक सरकार वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केंद्रीय सरकार तथा उन विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रीय उपविभागों की सरकारों के बीच विभाजित एवं वितरित रहती है, जिनको मिलाकर संघ बनता है। चौथा, फाइनर संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों में निहित रहता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में, जो क्षेत्रीय इकाइयों के समुदाय द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती है। संघात्मक राज्य की विशेषताएं। संघात्मक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, संघ का आधार पारस्परिक संगठन है, एकता नहीं। संघ में इकाइयों की स्वतंत्रता और स्वरूप को सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, संघ निर्माण के पश्चात अव्ययी एकक अपनी संप्रभुता को खो देते हैं। संप्रभुता नवनिर्मित संघ राज्य में निहित हो जाता है। तीसरा, संघ शासन के एक एक दो प्रकार होते हैं, केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार। चौथा, शासन शक्तियों का केंद्रीय तथा इकाइयों की सरकार के बीच विभाजन होता है। केंद्रीय शासन के अधिकार क्षेत्र में समानहित तथा राष्ट्रीय महत्व के विषय और इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय रहते हैं। पांचवा, संघ स्वयं उत्पन्न नहीं होता अपितु उसका निर्माण किया जाता है। छठवां, संघ शासन में संविधान का होना नितांत आवश्यक है। संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है तथा दोहरी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। सातवां, संघवाद के लिए संविधान को कठोर होना चाहिए। संविधान की कठोरता के लिए संशोधन की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित रहनी चाहिए। आठवां, संघ शासन में संविधान सर्वोच्च होता है। संवैधानिक विषयों का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नौवां, संघ विभिन्न अव्ययी राज्यों के बीच स्थायी एकता स्थापित करता है। दसवां, केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न मतभेदों और संघर्षों को दूर करने एवं राज्यों तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र संघीय न्यायालय होता है। यह संविधान का संरक्षक होता है। संघ राज्य के आवश्यक तत्व। संघात्मक राज्य के निम्नलिखित मूल तत्व हैं। पहला, लिखित संविधान। संघात्मक सरकार विभिन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। इसमें केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, उनके अधिकार क्षेत्र तथा कृतियों का उल्लेख आवश्यक है। इस हेतु एक लिखित निश्चित तथा स्पष्ट संविधान का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, सर्वप्रिय और कठोर संविधान। संघात्मक सरकार का संविधान उसकी सर्वोच्च विधि है। प्रोफेसर हिबियर के शब्दों में, केंद्रीय और प्रादेशिक राज्यों की स्थापना जिन शर्तों के आधार पर हुई और जिन शर्तों के आधार पर दोनों पक्षों को राज्य की शक्तियां प्राप्त हुई, वे शर्तें दोनों पक्षों की सरकारों पर पूर्णतः बाध्य है। संघीय सरकार की स्थापना की यह आवश्यक शर्त है। तात्पर्य यह है कि संघ शासन में संविधान सर्वोपरि सत्ता है, उसके उपबंधों के विरुद्ध विधियों का निर्माण नहीं हो सकता। संविधान की सर्वोपरिता की पहचान उसकी अपरिवर्तनशीलता है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष संशोधन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। डाइसी ने संविधान की कठोरता के विषय में लिखा है कि संविधान या तो अटल अथवा अपरिवर्तनशील होना चाहिए, या उसे कोई ऐसी सत्ता ही बदल सके जो सामान्य विधानमंडलों से ऊंची हो। उस सत्ता का निर्माण संविधान के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन में केंद्र तथा इकाइयों के बीच शासन शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। दोनों प्रकार की सरकारों का अधिकार क्षेत्र लिखित निश्चित तथा स्पष्ट होना चाहिए। अधिकारों के विभाजन की मुख्य तीन प्रक्रियाएं हैं। प्रथम, संविधान में केंद्र सरकार की शक्तियों को सूचीबद्ध करके अवशेष शक्तियों को इकाइयों को देना चाहिए। द्वितीय, इसके विपरीत, इकाइयों की शक्तियां तथा कृतियों का उल्लेख हो और अवशेष शक्तियां केंद्र को दे दी जाएं। तृतीय, केंद्र तथा इकाइयों के अधिकारों की पृथक परिगणना के बाद अवशेष शक्तियां केंद्रीय इकाइयों को दे दी जाएं या उनका समयानुकूलन निर्धारण हो। भारत में एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट अधिकार केंद्र को दे दिए गए हैं। 4, सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक शासन के लिए एक स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। संविधान के संरक्षण अव्ययी एककों के पारस्परिक झगड़ों का फैसला करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता बढ़ती जाती है। यह न्यायालय संविधान का अभिभावक तथा व्याख्या और संविधान का संतुलन चक्र है। हॉस्किन के शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय शासन यंत्र में संतुलन रखने वाला पहिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा है। 5, दोहरी शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण दोहरापन है। इसमें 2 प्रकार की सरकारें, अलग अलग सरकारों के लिए अलग अलग यंत्र और दोहरी नागरिकता होती है। कुछ संघों में कई बातों में एकहरी व्यवस्था को भी अपनाया जाता है। संघ राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। संघ सरकार के निर्माण की साधारणतः 2 प्रक्रियाएं हैं, सम्मिलन तथा पृथकीकरण। कतिपय स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्य कुछ सामान्य उद्देश्यों जैसे सुरक्षा, व्यापार आदि की प्राप्ति हेतु परस्पर समझौता कर केंद्र शासन की स्थापना करते हैं। स्थानीय महत्व के विषयों पर उनका पूर्वतः ही नियंत्रण रहता है। उनकी सार्वभौमिकता सिमट कर केंद्र शासन में चली जाती है, पर कई क्षेत्रों में उनकी स्वायत्तता बनी रहती है। संघ निर्माण की यही प्रक्रिया सम्मेलन की प्रक्रिया कहलाती है। विश्व के प्रमुख संघ जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुए। पृथकीकरण की प्रक्रिया के अनुसार एकात्मक राज्य में विभिन्न प्रांतों के आर्थिक स्वायत्तता प्रदान कर केंद्रीय सरकार को केवल कुछ समान विषयों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, जैसे सुरक्षा, वैदेशिक नीति, व्यापार, आवागमन आदि। इस प्रक्रिया द्वारा एकात्मक सरकार को संघात्मक सरकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। कनाडा, ब्राजील, भारत आदि संघों का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। संघ और राजमंडल। जब विभिन्न प्रभुत्व संपन्न राज्य कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं तो उसे राज्यमंडल की संज्ञा दी जाती है। हॉल के राज्यपाल राज्यमंडल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्यमंडल ऐसे स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का संघ है जो सदा के लिए कुछ उद्देश्यों के हेतु अपनी स्वतंत्रता को त्याग देते हैं और वे सांझे की सरकार में शामिल हो जाते हैं। प्रसिद्ध विधिवेता ओपेनहाइमर के शब्दों में राज्यमंडल में कई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य सम्मिलित होते हैं। उनका राज्यमंडल बनाने का उद्देश्य होता है अपनी आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता को कायम रखने हेतु। वे एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि भी करते हैं। उक्त संधि के द्वारा जो संघ बनता है उसके सदस्य राज्यों के ऊपर कुछ अधिकार अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उक्त सदस्य राज्यों के नागरिक किसी प्रकार राज्यमंडल के प्रति वफादार नहीं होते। बहुत से विद्वान संघ और राज्यमंडल को एक ही मानते हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला यह है कि दोनों शब्द एक ही धातु से निकले हैं। दूसरा, दोनों शासन व्यवस्थाओं के बीच अनेक समानताएं हैं, जैसे संघ और राज्यमंडल दोनों का निर्माण विभिन्न राज्यों के कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलन से होता है। दोनों में एक केंद्रीय शासन की स्थापना होती है। फिर भी दोनों पद्धतियों में मौलिक अंतर है। पहला, संघ शासन की इकाइयां स्वतंत्र तथा संप्रभुता संपन्न नहीं होती। संघ निर्माण के पश्चात उनकी संप्रभुता केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है। इसके विपरीत राज्यमंडल के सदस्य राज्य स्वतंत्र तथा संप्रभु होते हैं। वे ना तो नए राज्य का निर्माण करते हैं और ना अपनी संप्रभुता का त्याग ही। दूसरा, संघात्मक शासन में एक राष्ट्रीयता होती है। संघीय न्यायपालिका और व्यवस्थापिका होती है और संघीय नागरिकता होती है, लेकिन राज्यमंडल में एक राष्ट्रीयता नहीं होती, ना एक संघीय नागरिकता, ना न्यायपालिका और ना व्यवस्थापिका। तात्पर्य यह है कि संघात्मक व्यवस्था एक पूर्ण राष्ट्र की रचना करती है, जबकि राज्यमंडल केवल एक सामान्य संगठन का। तीसरा, संघ की रचना का आधार एक संविधान होता है, जो संघ तथा एकक राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्माण करता है। इसके विपरीत राज्यमंडल की रचना का आधार कोई संविधान नहीं, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते किए जाते हैं। चौथा, संघ शासन एक स्थायी व्यवस्था है, राज्यमंडल अस्थायी। संघीभूत इकाइयां संघ राज्य से पृथक नहीं हो सकती, जबकि राज्यमंडल के सदस्य राज्यों को उसके पृथक होने का अधिकार देता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद राज्यमंडल भंग भी किया जा सकता है। पांचवा, संघ शासन में यद्यपि केंद्र सरकार राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है, फिर भी उसका आधार संविधान है। अवयवी इकाइयां ना तो उससे नष्ट कर सकती है और ना तो संवैधानिक संशोधनों के बिना उनके अधिकारों में कमी बेसी की जा सकती है। इसके विपरीत राज्यमंडल को केंद्रीय सदस्य राज्यों द्वारा नष्ट किया जा सकता है और उसकी शक्तियों को घटाया जा सकता है। निष्कर्ष, राज्यमंडल एक ढीला ढाला संघ है। आज की प्रवृत्ति पूर्ण संघ शासन की ओर है। राज्यमंडल भी संघ में परिवर्तित होते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में राज्यमंडल के स्थान पर संघ शासन की स्थापना हुई है। संघ के लिए अपेक्षित शर्तें, संघ शासन के निर्माण के लिए कुछ दशाओं का होना अनिवार्य है। इन दशाओं या शर्तों के पूर्ति होने पर ही संघ का निर्माण हो सकता है या यह व्यवस्था हो सकती है। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र तथा इकाइयों के बीच होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि केंद्र तथा एककों के सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र तथा समकक्ष हों। डाइसी के अनुसार संघ निर्माण के लिए दो बातें अनिवार्य हैं, क सर्वसाधारण तथा ख राज्य संघ बनाने के इच्छुक हो, ना कि केवल एकता के लिए। प्रोफेसर हवियर के शब्दों में लिखा जाए कि संघ में राज्य मिलना तो चाहते हैं, किंतु वे एकात्मक शासन के निर्माण के इच्छुक नहीं होते। संघ निर्माण की इच्छा के अतिरिक्त कुछ ऐसी दशाओं का भी रहना अनिवार्य है, जिससे संघ का सफलतापूर्वक निर्वाह हो सके। प्रोफेसर हिवियर का कहना है कि जो राज्य समुदाय या संघ बनाने के इच्छुक हों, वे इतने संगठित और सशक्त भी हो कि संघ व्यवस्था की सफलता के साथ निर्वहन कर सकें। संघ व्यवस्था के निर्माण तथा उसकी सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, भौगोलिक सामीप्य। जो क्षेत्र मिलकर संघ बनाना चाहते हैं, उन्हें भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से लगा होना चाहिए, अर्थात संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों को भूमि तथा जल के द्वारा एक दूसरे से दूर दूर नहीं होना चाहिए। भौगोलिक निकटता में ही सामान्य राजनीति, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं, जो भावात्मक एकता के स्रोत हैं। गिलक्राइस्ट ने भौगोलिक निकटता पर जोर देते हुए कहा है कि दूरी से केंद्रीय और स्थानीय सरकारें दोनों में उपेक्षा और कठोरता उत्पन्न हो जाती है। जहां लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो, वहां राष्ट्रीय एकता समाप्त हो जाती है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक प्रथाओं में समानता प्रोफेसर वियर ने कहा है, जिन लोगों में समान राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान थीं या जो समान राजनीतिक संस्थाओं के बीच विद्यमान थे, उन्हीं में संघ निर्माण की इच्छा पैदा हुई। संस्थाओं की समानता से लोगों में और राज्यों में एक साथ काम करने की इच्छा पैदा हुई। यह सत्य इस बात को महत्व देता है कि प्रत्येक संघीय संविधान एककों की शासन व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करने का आदेश देता है। तीसरा, जातीय ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक एकता संघ निर्माण के लिए लोगों में रक्त धर्म भाषा संस्कृति आर्थिक ऐतिहासिक तथा राजनीतिक स्वार्थों की एकता होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि ये शर्तें विद्यमान ही हों, पर जितनी ही अधिक समानता पाई जाएगी संघ उतना ही दृढ़ होगा। मिल के शब्दों में संघ निर्माण के लिए जाति भाषा धर्म और राजनीतिक संस्थाओं की अनुकूलता अनिवार्य है। उपयुक्त अनुकूलताओं से समान राजनीतिक स्वार्थों की सृष्टि होती है। प्रोफेसर हिवियर का मत है कि इस प्रकार की असमानताओं से संघीय सरकार दुर्बल हो जाती है। अतः जहाँ तक हो इस प्रकार की असमानताओं से बचना चाहिए। यहाँ के लोगों में सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक असमानताएं होती हैं, वहाँ के लोग मिलजुल कर काम नहीं कर सकते। चौथा, अवयवी राज्यों की समानता। अवयवी राज्यों में विषमता बहुत बड़े रूप में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो जनसंख्या क्षेत्रफल धर्म तथा ऐतिहासिक परंपराओं की अधिक से अधिक समता होनी चाहिए। मिल के शब्दों में संघवाद का सार यह है कि कोई एक अन्य की अपेक्षा इतना अधिक शक्तिशाली ना हो कि अन्य कई के योग से बड़ा संपन्न हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अन्य एककों को दबाएगा और केंद्रीय सरकार को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा। प्रोफेसर हिवियर ने कहा है कि छोटे और बड़े एककों के बीच संतुलन होना चाहिए, ताकि छोटे एकक अपने अधिकार क्षेत्र की मर्यादा रख सकें और बड़े एकक छोटे एककों को परेशान ना कर सके। पांचवा, राजनीतिक चेतना। संघ के नागरिकों में ऊंचे स्तर की राजनीतिक जागृति होनी चाहिए। उन्हें अपने राज्य तथा संघ के प्रति अधिकार और कर्तव्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। संघ शासन की सफलता जनसमान की विकसित राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। छठा, दृढ़ भावना। संघ बनाने वाले राज्यों के लोगों में एक होने की दृढ़ भावना होनी चाहिए। डाइसी ने इस शर्त पर काफी जोर दिया है। संघात्मक राज्य के गुण। आज संघवाद सर्वाधिक प्रचलित शासन व्यवस्था है। जिस प्रकार मध्ययुग में एक सामान्य प्रवाह सामंत प्रथा की ओर था, तथा 15वीं और 16वीं शताब्दी में निरंकुश स्वेच्छाचारिता की ओर था, उसी प्रकार आजकल प्रवाह संघवाद की ओर है। सिजविक का कहना है कि जब हम भूत से भविष्य की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो शासन व्यवस्था के संबंध में हमें संघ व्यवस्था के विकास की सबसे अधिक संभावना प्रतीत होती है। प्रोफेसर लास्की का तो विचार है कि हमारा संपूर्ण समाज ही संघात्मक है। यही सही तथ्य है कि विश्व एक संघात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मेल ने कहा है कि यदि कार्यकुशलता एवं स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता दर्शाया जाए, तो वर्तमान में इस प्रकार के संगठनों की जितनी अधिक संख्या होगी, संसार के लिए उतना ही अच्छा होगा। संघ शासन की लोकप्रियता के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता का समन्वय। संघ शासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि बहुत से छोटे छोटे राज्य मिलकर एक राष्ट्र को जन्म देते हैं और साथ ही साथ अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी सुरक्षित रखते हैं। छोटे छोटे दुर्बल राज्य एकता के सूत्र में बंध जाते हैं और सबल केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। साथ ही संघीभूत राज्यों की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहती है। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतंत्रता का सुंदर समन्वय संघात्मक प्रणाली में ही मिलता है। यह व्यवस्था छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांधे रखती है, विभिन्नताओं के बीच एकता स्थापित करती है और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। संघ राज्य छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व को बनाए रखता है, उन्हें शक्ति प्रदान करता है, साथ साथ गौरव और प्रतिष्ठा भी। दूसरा, स्थानीय प्रशासन प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त। संघ शासन में शक्ति के विकेंद्रीकरण के चलते स्थानीय स्वशासन तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास होता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त है। स्वशासन तथा प्रजातंत्र के विकास के परिणाम स्वरूप नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है, उनका मानसिक स्तर ऊंचा रहता है, उनमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है, उनका व्यक्तित्व निखरता है। तीसरा, सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीनता नहीं। राजनीतिक चेतना के विकास के कारण संघ शासन में नागरिकों में सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीनता नहीं आने पाती। इससे प्रांतीय तथा स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए उसी स्थान से योग्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो जाता है, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक रुचि, साहस एवं सफलतापूर्वक करते हैं। चूँकि स्थानीय जनता को स्थानीय मामलों के सुलझाने में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिलता है, इसलिए उसमें आत्मसम्मिलन और रुचि की भावना का विकास होता है। चौथा, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी। संघात्मक शासन आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। इसमें केंद्र तथा राज्यों को अपने आर्थिक मामलों में वृद्धि करने का अवसर मिलता है। संघ शासन मित व्ययी है। सभी राज्यों के संगठित हो जाने से आय व्यय की व्यवस्था एक ही स्थान से होती है, इसलिए आमदनी बढ़ जाती है और खर्च कम हो जाता है। सेनाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं के एक हो जाने से खर्च में काफ़ी कमी हो जाती है। विशाल देशों के लिए उपयुक्त। संघ शासन उन बड़े बड़े देशों के लिए उपयुक्त तथा हितकर है, जहाँ विभिन्न संप्रदाय, धर्म, भाषा तथा संस्कृतियाँ हैं। इसलिए अमेरिका, सोवियत रूस, भारत जैसे विशाल तथा विभिन्नतापूर्ण देशों में इसे अपनाया गया है। छवां, निरंकुशता तथा अधिनायकवादी का विरोध। ब्राइस के विचारानुसार संघात्मक शासन में सरकार के निरंकुश होने की गुंजाइश कम रहती है। केंद्रीय सरकार निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती, क्योंकि केंद्र तथा इकाइयों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन रहता है। दोनों सरकारों में भी कोई सरकार एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्यों को भी स्थानीय मामलों में काफ़ी स्वतंत्रता मिलती रहती है, इसलिए तानाशाही का भय नहीं रहता। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा। संघ अनेक राज्यों के सम्मिश्रण से बनता है, अतः उनमें इन सभी राज्यों की सम्मिलित शक्ति निहित होती है। पूरे राष्ट्र की शक्ति संगठित हो जाती है, फलतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ जाती है। आठवां, विश्व संघ की ओर संकेत। संघवाद एक विश्व की ओर संकेत करता है, यह विश्व संघ के निर्माण की ओर मार्ग प्रदर्शन करता है। नौवां, मानव हितकारी। विश्व संघ में मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि सारे राष्ट्र मिलकर एक इकाई बन जाए तो विश्व युद्धों की लपटों से बचा जा सकता है और मानव जाति का संगठित रूप से रचनात्मक विकास हो सकता है। संघात्मक राज्य के अब दोषों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन गुणों के बावजूद संघात्मक राज्य में अनेक दोष पाए जाते हैं। संघात्मक राज्य के दोष निम्नलिखित हैं। पहला, कमजोर शासन। संघ शासन एक कमजोर व्यवस्था है। शक्ति विभाजन और विकेंद्रीकरण के कारण सुदृढ़ शासन की स्थापना नहीं हो सकती। दुर्बल शासन के कारण इसमें निर्णय करने की शीघ्रता, एकरूपता, दृढ़ता इत्यादि का अभाव रहता है। दूसरा, एकता का अभाव। संघ शासन एक विभाजित एवं कलहपूर्ण घर के समान है। शासन की दो इकाइयां तथा दोहरी व्यवस्था के कारण आपसी झगड़े तथा वैमनस्य का भय बना रहता है। केंद्र तथा इकाई अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हैं, उनके शासन तथा कानूनों में भिन्नता पाई जाती है। दोनों सरकारों में दो विरोधी राजनीतिक दलों का शासन हो सकता है, जो दो विरोधी नीति का अनुसरण कर सकते हैं। अतः संघात्मक शासन राष्ट्र की एकता और एकरूपता के लिए घातक है। तीसरा, अकुशल शासन। देश शासन प्रणाली के कारण शासन में दक्षता एवं कुशलता घटती है। सरकार के निर्णय में विलंब होता है तथा उत्तरदायित्वहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती है। चौथा, अधिक खर्च। दोहरी शासन प्रणाली के संघ शासन में अधिक खर्च होता है तथा अपव्यय की संभावना रहती है। पांचवा, कानूनी सत्ता तथा न्यायपालिका का अनावश्यक महत्व। संघीय व्यवस्था में कानून की सत्ता पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, अतः यह व्यवस्था वहीं सफल हो सकती है जहां के लोग कानून में आस्था रखें। कानून की सत्ता कायम रखने के लिए न्यायपालिका को बहुत महत्व दिया जाता है। संविधान के संरक्षक की हैसियत से न्यायपालिका को कानून को रद्द करने का अधिकार प्राप्त रहता है। इस अधिकार का कभी कभी वह नाजायज फायदा भी उठाती है, जिसके कारण संघीय कार्यपालिका तथा विधान पालिका की स्थिति कमजोर हो जाती है। छठा, विद्रोह और संघर्ष की भावना। संघ में यह भय बना रहता है कि अब व्ययी राज्यों की सरकार विद्रोह कर सकती है। विरोधी हितों की रक्षा के लिए इकाइयों में फूट और कलह हो सकता है। इसका अंतिम रूप गृह युद्ध है। यह डर लगा रहता है कि कोई राज्य संघ से अलग ना हो जाए या संघ के कुछ राज्य मिलकर अन्य राज्यों को आत्मसात ना कर लें। संयुक्त राज्य अमेरिका का गृह युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। सातवां, संकट काल में असमर्थ आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण के समय संघीय शासन में स्थिरता आ जाती है, क्योंकि इसकी शक्ति केंद्रित नहीं रहती, अतः यह संकट काल का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। रूढ़िवादिता, कठोर लिखित संविधान के कारण शासन रूढ़िवादी होने की प्रवृत्ति रखता है। इसमें बार बार संविधान की दुहाई दी जाती है तथा संशोधन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अतः ब्राइस ने संघ व्यवस्था के दोषों को सूचीबद्ध किया है। पहला, कमजोर पर राष्ट्र नीति। दूसरा, संघ सरकार का राज्यों तथा नागरिकों पर दुर्बल प्रभाव। तीसरा, राज्यों के पृथक होने का भय। चौथा, अव्ययी एककों की आपसी गुटबंदी। पांचवा, संघ की विधि निर्माती शक्ति पर नियंत्रण। छठा, शासन और कानून में एकरूपता का अभाव। और सातवां, अधिक खर्च, कष्ट तथा देरी। संघात्मक तथा एकात्मक राज्यों में तुलना। संघात्मक तथा एकात्मक राज्यों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एकात्मक शासन में सिर्फ एक इकाई होती है, केंद्रीय सरकार। संपूर्ण शासन शक्ति केंद्र सरकार में केंद्रित रहती है। इसमें सत्ता का केवल एक स्रोत रहता है। केवल एक अच्छा शक्ति से शासन चलता है। स्थानीय इकाइयों का अस्तित्व और अधिकार केंद्र पर निर्भर करता है। इसके विपरीत संघात्मक शासन शक्ति केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकारों में विभाजित रहती है। केंद्र तथा राज्य सरकारों का पृथक पृथक अस्तित्व रहता है, जो संविधान पर आश्रित है। दोनों सरकारों का स्थान समकक्ष है। इस प्रकार एकात्मक सरकार का आधार शक्तियों का एकीकरण है, पर संघात्मक सरकार का आधार शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दूसरा, कुछ स्वतंत्र राज्य समान हितों की रक्षा के लिए आपसी समझौते द्वारा संघ का निर्माण करते हैं। वे शासन के कुछ अधिकार संघ को देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं। यह बंटावार एक संविधान के आधार पर होता है, जिसे विशेष प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। लेकिन एकात्मक सरकार में केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाने के साधारण तरीकों से संविधान में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। उसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, संघात्मक सरकार का संविधान लिखित, निश्चित तथा कठोर होता है, जबकि एकात्मक सरकार का संविधान प्राय अलिखित, अविकसित एवं लचीला होता है। चौथा, संघात्मक सरकार में शासन यंत्र दोहरे होते हैं, जैसे दोहरी नागरिकता, दो धार सभाएं, दो कार्यकारिणी, दो न्यायालय इत्यादि। इसके विपरीत एकात्मक सरकार में इकहरा शासन यंत्र और इकहरी नागरिकता होती है। पांचवा, एकात्मक सरकार में कानूनों, न्याय विधानों और शासन विधानों की में अनुरूपता रहती है। इससे विपरीत संघात्मक सरकार में विभिन्नता रहती है। छठा, संघ शासन में अधिकार क्षेत्र के विभाजन, अव्ययी एककों के बीच पारस्परिक मतभेद और संघर्ष की काफ़ी गुंजाइश रहती है, जिसका निपटारा करने के लिए स्वतंत्र था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। लेकिन एकात्मक सरकार में ऐसे झगड़ों की गुंजाइश नहीं रहती और ना ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता पड़ती है। सातवां, संघात्मक सरकार के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है, परंतु एकात्मक सरकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है। आठवां, संघ शासन में दो प्रकार के कानून होते हैं, संघ सरकार के कानून और राज्य सरकार के कानून। प्रत्येक नागरिक के दो प्रकार के कानूनों का पालन करना पड़ता है। इसके विपरीत एकात्मक राज्य में केवल एक ही प्रकार का कानून होता है।